साथ मौजूद हैं, अलामा मोहम्मद अमीन शहीदी मुमताज स्कॉलर हैं। और हम आपसे बात जिस तरह कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले भी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से हम उनसे बात कर रहे हैं, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है वो रोशनी डाल रहे हैं। और यकीनी तौर पर इनसे बेहतर हमें कोई और गाइड नहीं कर सकता। और जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी, मुझे बताइएगा ग़ज़वात में क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी ग़ज़वात हुए क्या हज़रत अली उनके साथ रहे, या कोई ऐसा ग़ज़वा भी था जिसमें शिरकत ना कर सके हों?
देखिए मजमूई तौर पर तकरीबन इस्लाम में 86 जंगें हैं,
86
जंगें हैं और ये सारे ग़ज़वे हैं या कुछ इनमें सरिये हैं। सरिया उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी करीम बिनफ्से नफीस खुद शरीक न हुए। ग़ज़वात वो हैं जिनमें नबी करीम खुद शरीक हुए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का चूंकि रोल एक कमांडर का रहा, सिपाह सालार का रहा और इंतहाई एक शुजा और बहादुर शख्सियत के तौर पर उनका रोल रहा, इस वाले से कमोबेश तमाम जंगों में अमीरुल मोमिनीन खुद शरीक रहे बनफसे हफीज। अल्लाह गालिबन जंग तबूक के हवाले से यह है कि अल्लाह के रसूल ने लोगों की अमानतें वापस देने के लिए अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को मदीना में छोड़ दिया, जिस पर अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि या रसूलल्लाह मुझे आप मदीना में ख्वातीन और बच्चों के साथ छोड़ रहे हैं और बाकी लोगों को जंग पर लेके जा रहे हैं, तो इसमें भी अल्लाह के रसूल की एक हिकमत थी, वहाँ पर मकाम को बयान करना था। लिहाजा फरमाया कि ए अली, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम्हारी नस्बत मुझसे ऐसे ही हो जैसे हारून की नस्बत हज़रत मूसा से थी, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ अपना जानशीन बनाकर, अपने जानशीन की हैसियत से तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, गोया मैं खुद यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपनी जगह तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मजमूई तौर पर जंगों से और जंगों के अलावा भी अगर हम देखें, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था ब्रेक में कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की जिंदगी के हवाले से रसूल करीम से आपके ताल्लुक को हमें देखना चाहिए कि वो किस तरह का ताल्लुक है। देखिए रसूल करीम रहमतुल लिल आलमीन की हैसियत से सब पर मेहरबान है, कोई दूसरी राय नहीं है इसमें, और उनकी मेहरबानियों को, उनकी उतूफत को, उनकी रेफत को और उनके अंदर जो मौजूद मेहर है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी न सिर्फ पसंद फरमाया है बल्कि उसको सामने रखते हुए वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन कहा है। उसके साथ साथ एक और बात भी कही है, वो यह है के रसूल करीम का कोई भी अमल और कोई भी कौल, कोई भी फेल ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह की रजा ना हो।
बेशक
जो कुछ भी रसूल करीम ने किया है, कहा है, अंजाम दिया है, वो सब का सब वही है जो अल्लाह के इरादे और अल्लाह की मशीयत के ताबे है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने अगर किसी के बारे में कुछ कहा है तो ये गोया अल्लाह ने कहा है, हमें उसको इस हैसियत से देखना है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की विलादत से लेकर शहादत तक ये जो 63 साल की जिंदगी है, इसमें जो चीज हमें ताज्जुब में डालती है वो ये है कि हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के बगैर कोई काम अंजाम नहीं पाता, उसकी मशीयत और इरादे के खिलाफ कोई काम अंजाम नहीं पाता। अल्लाह तबारक व तआला ने अली इब्न अबी तालिब की विलादत के लिए ऐसा एहतमाम किया कि मक्का के अंदर खाने काबा की दीवारें शक हुई, हजरत फातिमा बिनते असद को इजाजत मिली, वो काबा के अंदर दाखिल हुई, दीवारें दोबारा जुड़ गईं और उसके बाद अली की विलादत हुई कहां पर? उस जगह जिसको खाने काबा और अल्लाह का घर कहा जाता है। ज़ाहिर मशीयत इलाही का तकाजा था ये, और ये बताना था कि मैं अपने घर उसको भेज रहा हूं जो अपने भाई रसूलुल्लाह की मईयत और हमराही में आएगा और आकर इन्हीं बुतों को तोड़ेगा जो बुत इस वक्त खाने काबा को आलूदा कर रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। अल्लाह तबारक बताला ने खुद ये अमल करके बता दिया कि अली वो हस्ती हैं नबी करीम के साये में पलने वाली जिन पर खास नजर है अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल की भी।
बेशक
इसी तरह से अल्लाह तबारक बताला ने शहादत के लिए भी एहतमाम इसी तरह से किया और अपने घर में किया। शहादत कहां पर हुई? मस्जिद कूफा में। मस्जिद कूफा अंबिया की सरजमीन है। मस्जिद कूफा वो जगह है जहां से नूह का तूफान शुरू हुआ। मस्जिद कूफा वो जगह है जहां पर हजरत इब्राहिम, हजरत आदम से लेकर हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत खिजर, हजरत गालिबन हजरत शुएब भी, इस तरह से कोई 8-10 अंबिया की इबादतगाहें हैं ये जगह। عبادت گاہ ہے ہر جگہ، یعنی مسجد کوفہ کے اندر اگر آپ جائیں، بہت بڑی مسجد ہے، اس میں مختلف جگہوں میں مقام ابراہیم ہے، مقام موسیٰ ہے، مقام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی مختلف انبیاء کے مقامات ہیں، مقام حضرت آدم ہے، مقام نوح ہے. اس مسجد کے محراب کے اندر علی ابن ابی طالب کو 19 رمضان کی صبح فجر کھانی پڑتی ہے، فجر کے موقع. یعنی اس ٹائم کا اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا.
بے شک
اللہ نے بھی ایسا موقع فراہم کیا ہے اور ایسی جگہ فراہم کی ہے جو اللہ کی نگاہ میں انتہائی مقدس جگہ ہے، انتہائی متبرک جگہ ہے، انتہائی بلند اور بالا مقام ہے. یعنی اللہ نے علی کے حوالے سے جو اہتمام کیا اور رسول اللہ نے جو اہتمام کیا. میں آج صبح بھی کسی اور ٹی وی چینل پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ میں مولانا عبدالحق کا پڑھ رہا تھا، جن کو بابا اردو کہتے ہیں. انہوں نے کہیں پر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ میں جب رسول کریم کی روایات اور احادیث کو دیکھتا ہوں علی ابن ابی طالب کے حوالے سے، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے رسول کریم کی بارگاہ میں رسول کریم کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا علی کی تعریف کرنے کے علاوہ.
سبحان اللہ
امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. یہ تو ایسے موضوعات ہیں، خصوصاً حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اس پہ تو بولتا جائے، لکھتا جائے، شاید قلم ختم ہو جائے، لیکن ان کی فضائل بیان نہیں ہو سکتے ہیں. شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ، وقت کی قلت ہے چونکہ، لہٰذا ہم لوگ جو ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمارے پاس اس وقت جو ہے کمرشل بریک موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ رہے گا کچھ دیر بعد.